नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी के आज के इस अंक में। दोस्तों, कल हमने बात की थी स्पिरिचुअल हेल्थ की और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल डिसीजेज की, स्पिरिचुअल इलनेस की। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज फिर स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर श्रीमंत जी। डॉक्टर श्रीमंत जी, आपका स्वागत है।
थैंक यू विशाल भाई जी।
कल सर हमने बात की थी स्पिरिचुअल हेल्थ की, तो आज हम चाहेंगे कि हम इससे आगे बढ़े, एक कदम आगे। स्पिरिचुअल इलनेस यानी स्पिरिट की जो डिसीजेज है वो क्या है?
मैं आध्यात्मिक बीमारियां क्या है इसके बारे में स्पष्टीकरण करने के पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में डिजीजेस जो हम कहते हैं बीमारियां, वास्तव में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज। आप देखिए, डिजीज मीन्स डिस प्लस इज, अर्थात जो सारी कंडीशंस हमें एक नॉर्मल स्थिति में रहने में बाधक है, वास्तव में वो सारी हमारी बीमारियां हैं। वो हमारी आध्यात्मिक बीमारियां भी ऐसे ही है, जो सारे कंडीशंस हमें आत्मा की जो नॉर्मल स्टेज में, जैसे सुख, शांति, पवित्रता, खुशी, कल हम चर्चा कर रहे थे, उस नॉर्मल स्टेज में हमें रहने नहीं देते हैं, तो उसको ही वास्तव में हम आध्यात्मिक बीमारियां कहेंगे। और जैसे कल भी हम चर्चा किए थे कि जैसे प्रकाश का अभाव को ही हम अंधकार कहेंगे, इसी प्रकार किसी न किसी जब आत्मा की गुणों की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज पैदा होते हैं, जिसको वास्तव में हम आध्यात्मिक बीमारी भी कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल डिजीजेस, जिसको हम विकार भी कह सकते हैं, वास्तव में दीज आर एब्सेंस और डिफॉर्म स्टेट्स ऑफ द वर्च्यूज ऑफ द सेल्फ, अर्थात आत्मा की जो गुण है, ये गुण की कमी हो जाती है या जो अवगुण विकृत हो जाते हैं, इसलिए विकार जो कहा गया है ये विकृत शब्द से ही आया है, तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं। तो एक एक गुण हमारे, जैसे मुख्य सात गुण है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये हमारे निजी गुण है, जो इनर सेल्फ के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, ये क्वालिटीज, ये गुण की कमी हो जाती है या ये गुण विकृत हो जाते हैं, तब आध्यात्मिक बीमारियां पैदा होती हैं।
आध्यात्मिक बीमारी होने का जो एक कारण सामने नजर आता है वो हमारे विकृतियां जो अंदर घुसने लगती हैं, तो हमारी जो नेचुरल फॉर्म है वो कुछ कम होने लगती है।
नहीं, जैसे अंधकार घुसने से प्रकाश चला जाता है ऐसा तो नहीं होता है, प्रकाश के कमी होने से ही अंधकार आता है। इसी प्रकार बीमारियां घुसने से आध्यात्मिक गुण कम हो जाते हैं ऐसा नहीं, वास्तव में हमारे अंदर की जो गुण है, मूल गुण है, उसको जब हम खो बैठते हैं तो ही हमारे अंदर ये सब विकृतियां, ये सब बीमारियां पैदा होने लगती है। जैसे हमारे एक एक गुण के साथ हमारी जो नेगेटिविटीज है, अवगुण है, विकार है, वो बहुत बड़ा गहरा संबंध है। एक जैसे हमारे सात मुख्य गुण है, कल भी चर्चा किए थे
जी,
वो सारे गुणों का एक एक गुण अभाव होने से या विकृत होने से फिर कुछ बीमारियां पैदा होती है। इसका सात ऐसे अवगुण भी है, इसको सात मुख्य आत्मा की बीमारियां, स्पिरिचुअल डिजीज कह सकते हैं, इलनेस कह सकते हैं।
तो हम जानना चाहेंगे वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनके जो बढ़ती हैं गुणवत्ताओं के कम होने से, इसका किसके साथ क्या रिलेशन है?
तो देखिए, स्पिरिचुअल इलनेस मीन्स द नेगेटिविटीज ऑफ द माइंड और द वर्च्यूज इन अ डिफॉर्म्ड और परवर्टेड फॉर्म। इसको मैं एक एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, इस लिस्ट से आप समझ सकेंगे कि देखिए, जैसे हमारे सात गुण मुख्य रूप में है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, और भी बहुत सारे गुण हैं, कल हम चर्चा किए थे
36 गुण आपने बताए थे,
हमारे अंदर जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य और भय, ये सात मुख्य बीमारियां हैं। जैसे सात मूल गुण है, आज जो आत्मा को अनेक प्रकार की बीमारियां आक्रमण कर चुकी है, ये बीमारियों में से भी सात मुख्य बीमारियां, सात बीमारियों का सरदार है मैं कहूंगा। तो ये एक एक हमारे अंदर की गुण के डिफॉर्म स्टेज से ही अच्छा गुण, लेकिन जब डिफॉर्म हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, फिर ये एक एक पैदा होते हैं। हम चर्चा करेंगे, देखिए सबसे पहले है काम विकार, जो शारीरिक आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, और आज दुनिया में इसके कारण कितने क्या क्या रेप्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, आप दुनिया में कितनी बीमारियां फैल रही है आप तो जान रहे हैं
बिल्कुल।
लेकिन ये कैसे पैदा होता है, कौन सा ऐसा अच्छा गुण जो डिफॉर्म हो गया ताकि ये गुण, ये अवगुण पैदा हो गया या ये विकार पैदा हो गया, आप बता सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगाइए।
हमारे अंदर से जो आपने बताई आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, उसमें से
कौन से ऐसे गुण, कौन से ऐसे ओरिजिनल अपना अच्छा गुण जो वो विकृत हो गया? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं,
जी सर,
उससे स्पष्टीकरण होगा ताकि आप थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई व्यक्ति, जैसे स्मार्ट शब्द है
जी,
स्मार्ट किसी व्यक्ति को हम देख के कहते हैं ये तो अच्छा स्मार्ट है, अर्थात वो देखने में अच्छा लग रहा है, वेल ड्रेस्ड है, वेल बिहेव्ड है, वेल बहुत अच्छा बोलता है, तो जो भी देखने से वो देखते ही कहता है कि ये तो बहुत अच्छा एक स्मार्ट गाय है। परंतु आज ये शब्द विकृत हो चुका है, परवर्टेड हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ रिलेशन में आते समय कहते हुए आप सुने होंगे कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो, है ना? नहीं,
आजकल ये इस्तेमाल होता है।
तो कभी मान लीजिए कोई किसी को ठगी करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, किसी को समझ में आ जाता है ओवर स्मार्ट मत बनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं समझ जाता हूँ आपको, समझ गया हूँ आपको, कहने में आता है स्मार्ट वास्तव में अच्छा है, लेकिन उसको जब विकृत रूप में लोग इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर उसको विकार रूप में वो एबनॉर्मल माना जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण है, लेकिन वो जब परवर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, वो फिर ये आत्मा की बीमारी के रूप में फिर प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो विकृत हो गया जिससे लस्ट पैदा हो गया?
जी,
कौन सा गुण बताइए?
पवित्रता।
ठीक ही बताया, लेकिन और एक गुण है, मैं आपको बताता हूं, इट इज लव। देखिए, प्रेम बहुत शुद्ध है, निर्मल है, निस्वार्थ है। जैसे एक मां का बच्चे के साथ जो प्रेम है कोई खराब नहीं है,
सही
है ना? नहीं, तो इसलिए देखिए ईश्वर के साथ जो प्रेम है वो निर्मल है, स्वच्छ है। एक छोटा बच्चा, आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे आपस में जो उनका प्यार रहता है वो कितना निर्मल है, शुद्ध है। लेकिन आज देखिए लोग कहने में आते हैं, अब सुनते होंगे कहीं कहीं कि आई फेल इन लव विथ समबडी, नोबडी सेज आई राइज इन लव विथ समबडी, कोई कहता है?
नहीं, नहीं, यही कहेंगे फॉल इन लव।
तो है फॉल इन लव, है नॉट राइज इन लव। तो आज जो लव कहते हैं, लव की परिभाषा विकृत हो चुका है। सो इज इट लव और लस्ट? तो आज संसार में कोई किसी के शरीर के प्रति आकर्षित हो जाता है और प्रकार के उसकी भावना परिवर्तन हो जाते हैं, वो बॉडी कॉन्शसनेस में आके, वो देह के आकर्षण में आके जो विकृत भावनाएं उसको पैदा होते हैं उसको ही हम वो लव कह देते हैं। लेकिन नहीं, लव तो सच्चा होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है। परंतु आज लव विकृत हो गया है और लस्ट में परिवर्तन हो गया।
मतलब अगर लव की परिभाषा अभी हम जैसे समझे आपने कहा फॉल इन लव के बजाय अगर राइज इन लव हो तो लव है, अदरवाइज वो लस्ट है।
डेफिनेटली, तो हमारे अच्छा जो गुण है वो जब विकृत हो जाता है उसको विकार कहा जाता है, जो आत्मा की बीमारी कही जाती है। ठीक है ना? नहीं तो प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्यार अगर शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो लस्ट है। इसी प्रकार दूसरा मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐसा गुण हमारा है जो वो आज विकृत हो गया है जिसके कारण हमारे अंदर गुस्सा आता है। तो वास्तव में गुस्सा करना ठीक है, राइट है, अच्छा है?
अच्छा तो नहीं समझते हैं,
ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, एक स्पिरिचुअल डिजीज है। क्योंकि और ये बहुत सारे मैं आगे स्पष्टीकरण करूंगा, ये बीमारी जो आत्मा की बीमारी, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये कैसे अनेक फिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बीमारियों को पैदा करती है वो मैं आगे बताऊंगा, स्पष्टीकरण करूंगा। परंतु मैं यही बताना चाहूंगा अभी कि कौन सा हमारा एक गुण है जो विकृत हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, परवर्टेड हो गया, जो ये आज एंगर का, क्रोध का रूप ले गया।
पीस,
शांति। शांति को जब हम खो देते हैं तो क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जैसे आपने बताया कि प्यूरिटी को खो देते हैं तो फिर हम लस्ट पैदा होता है। लेकिन मेरा प्रश्न सीधा है कि कौन सा गुण विकृत हो गया जो वो एक एंगर का रूप ले लिया?
प्रेम।
नहीं, प्रेम चला जाता है तो लस्ट हो जाता है ना, लव माना प्रेम।
लव माना,
देखिए दूसरा है लॉ।
लॉ
फॉर एग्जांपल, आप एक जस्टिस को देखे होंगे, जज को देखे होंगे, उनके सामने कितने मर्डरर्स आते हैं, कितने प्रकार के लोग आते हैं जो अनेक प्रकार के दुष्कर्म करके कोर्ट में आते हैं, लेकिन कभी एक जज को एकदम लाल पीला होते हुए गुस्सा करते हुए तुमने ऐसा किया कभी देखा?
नहीं, वो तो सीधा निर्णय देंगे, जजमेंट देंगे और
हो गया बस। परंतु आज हम क्या करते हैं देख लीजिएगा, छोटा मोटा कोई कुछ भी गलती करता है तुरंत हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। एक जज कोई इसके सामने एक मर्डरर भी आता है, कुछ भी करके आता है तो भी गुस्सा नहीं करता है, वो लॉ पर चलता है। परंतु ईश्वरीय नियम, संसार के नियम पर चलना ये एक मर्यादा है, एक नियम है, ठीक है, एक गुण है। लेकिन जब उस लॉ को हम एक्चुअली एंगर का रूप दे देते हैं, वो विकृत हो गया, तो ये फिर बहुत नुकसानकारक है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है देखना, सबसे पहले वो लाल पीला खुद हो जाता है,
बहुत ज्यादा
उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसके अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा। तो इसलिए ये एक स्पिरिचुअल डिजीज है, लेकिन आज लोग गुस्सा करना कोई बीमारी नहीं समझते हैं,
आवश्यक समझते हैं। हाँ। कि गुस्सा नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा।
नहीं, लेकिन हमने देखा है हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के, मैं नजदीक से देखा हूं, कई सालों तक एकदम संपर्क में आके देखा हूं, जो हमारी मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी, कभी भी गुस्सा करते हुए उनको नहीं देखा। जबकि सारे विश्व में 140 देश में ब्रह्मा कुमारी संस्था के 9000 सेंटर से इतने सारे जिज्ञासु हैं, इतने कारोबार है, सीज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, परंतु कभी वो गुस्सा करके काम करते हुए नहीं देखा, सबको शांति से प्यार से सब काम करती थी। तो कहने का मतलब गुस्सा करके ही सब काम हासिल किया जाएगा? नहीं, शांति सबसे बड़ा विपन है, तो जिससे अपना भी भला है दूसरों का भी भला है। तीसरा मैं आपको कह सकता हूं कि कौन सा ऐसा गुण हमारे, कल तो हम चर्चा किए थे, जब संतुष्टता को खो देते हैं तो हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, संतुष्टता का अभाव ही लोभ का
उदय होता है।
हाँ, परंतु आज हमारा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा गुण है जो डिफॉर्म हो गया ताकि हमारे अंदर लोभ पैदा हो, ग्रीड पैदा हो गया, कौन सा ऐसा गुण होगा? वो अच्छा गुण है लेकिन वो विकृत हो गया,
ऐसा हमने लव समझा, ला समझा।
यस, वो है
एक्वायरिंग।
हाँ, कोई भी अच्छा को जीवन में उसको ग्रहण करना, उसका जीवन में अपनाना, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, या किसी से कोई गुण को ग्रहण करते हो, या शक्ति को अपनाते हो, ये जीवन में आवश्यक है। अच्छाई दूसरों से ग्रहण करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ये एक जो व्यक्ति गुणग्राही है वो सदा जीवन में प्रगति करता रहता है, दूसरों से गुण ग्रहण करता है या कुछ बातें सीखता है, तो जीवन में जो एक्वायरिंग करने का ये अच्छा गुण है। परंतु जब हम उसको विकृत कर देते हैं, आज दुनिया में लोग किसके पीछे पड़े हैं, सारे दिन कैसे 99 के चक्कर में ही है,
सही।
तो ये विकृत हो गया जिसके कारण, जिसको लोभ कहा जाता है, और आज इसके कारण लोग कितने क्या क्या कर रहे हैं, आप समाज में किस प्रकार का सबका हानि हो रहा है आप जानते हो। तो इसी प्रकार और हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे मोह,
अटैचमेंट,
ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है आत्मा की, और ये कौन सा ऐसा हमारे अच्छा गुण था जो विकृत हो गया, परवर्टेड हो गया, जो हमारे अंदर अटैचमेंट पैदा हो गया। देखिए, एक सिंपल जवाब है, केयरिंग नेचर। फॉर एग्जांपल एक नर्स कभी देखे होंगे हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चे, कितने सारे बच्चों को संभालती है, टाइम पर भोजन उनको खिलाती है, फीडिंग देती है, टाइम पर दवाई पिलाती है, वो बच्चों के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए एक्यूरेट काम करती है। परंतु एक मां का एक बच्चा के साथ जब मोह हो जाता है, अब देखना कोई बच्चा अगर बीमार है तो मां रात भर जागरण करेगी, डॉक्टर अगर कहेंगे दो दफा उसको दवाई देनी है तो 4-5 दफा पिला देगी, मेरे बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, तो और ही नुकसान हो सकता है ना।
नहीं बात,
तो आज मोह के कारण भी हमारे सेल्फ प्रोग्रेस में, बहुत सारी बातों में ये बाधक होता है। तो अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण फिर मां रोती रहती है, सारी रात कितने टेंशन लेती है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया। लेकिन एक नर्स को टेंशन होता है?
कभी नहीं होगा,
क्योंकि उनको केयरिंग नेचर है, वो एक्यूरेट करेगी, सब कुछ करेगी, कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन अटैचमेंट के कारण माँ गलती भी कर बैठती है और अपना नुकसान कर बैठती है। तो अटैचमेंट मोह भी एक आध्यात्मिक बीमारी है। कौन से एक हमारे गुण सद्गुण परवर्टेड हो गया, विकृत हो गया, जिससे ईगो पैदा हुआ, वो है हमारा सेल्फ एस्टीम। देखिए, आज मनुष्य समझता नहीं है कि वो कौन है। आज दुनिया में अनेक प्रकार की भावनाएं रख के लोग चलते हैं। कोई अपने को कहता है, मेरे जैसे बदनसीब तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो ऐसा हूं, खल हूं, कामी हूं, पापी हूं, कपटी हूं, अनेक प्रकार की। भले लोगों के सामने वो नहीं भी बोलेंगे, लोग मंदिर में जाके मूर्ति के सामने अब कौन है क्या है वो अपने प्रत्यक्ष करते हैं, मुखी अपने खुद ही अगर नहीं भी बोलेंगे मन ही मन सोचते हैं।
सही।
परंतु वास्तव में संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी किसे कहा जाता है? मनुष्य को कहा जाता है। क्यों? हमारे में पशु पंछी जानवर इतने संख्या में हैं, लेकिन मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया?
उसमें सोचने समझने की क्षमता है
और बाकी पशु पंछी जानवरों में नहीं है। मैं तो कहूंगा आज वर्तमान दुनिया में आज पशु पंछी जानवरों में ज्यादा समझ है, ज्यादा सोचने की शक्ति है, मनुष्य ये सब खो चुका है। आज अगर पशु पंछी जानवर देखेंगे उनके अंदर दया प्रेम आपस में सहयोग की भावना ज्यादा है। आप बड़े बड़े सिटी में जाइए, आप देखिए किस प्रकार के मनुष्य एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कैसी भावना है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जब कोई चोर कहीं चोरी करता है, मनुष्य पकड़ नहीं पाता है चोर को, तो एल्सेशियन डॉग रखता है। तो डॉग की परखने की शक्ति ज्यादा है कि मनुष्य की ज्यादा है? आप सोचिए। आप देखिए कहीं भूकंप होता है तो पशु पंछी जानवरों को पहले से पता चलता है और वो भाग जाते हैं।
सही।
लेकिन मनुष्य परख नहीं पाता है,
मनुष्य तो सोता रह जाएगा।
हाँ, तो आज देखिए मनुष्य के अंदर भले सोचने की शक्ति है, बुद्धि है, लेकिन आज हम देखते हैं कई पशु पंछी जानवर मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा उनकी सोच समझ है। फिर भी मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी इसलिए कहा गया है कि वास्तव में आज की स्थिति में ऐसी मनुष्य की हाल है, लेकिन मनुष्य जब संपूर्ण अवस्था में होता है, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोच समझ सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए महान कहा जाता है। परंतु एक मुख्य विशेषता, मुख्य अंतर है मनुष्य और पशु पंछी जानवरों में।
वह क्या?
वो है, देखिए हम सभी किसकी संतान है?
निसंदेह
ईश्वर की संतान है। तो हम मनुष्य अगर चाहे तो अपने बुद्धि से वो ईश्वर को पहचान सकता है और ईश्वर के साथ नाता रिश्ता जोड़ सकता है और ईश्वर से सर्व प्राप्ति भी कर सकता है। लेकिन पशु पंछी जानवर कितना भी मेहनत करें, वो भगवान को ना जान सकते हैं, ना नाता रिश्ता जोड़ सकते हैं, ना उनसे कुछ प्राप्ति भी कर सकते हैं। बहुत दूसरा एक मुख्य अंतर है पशु पंछी जानवर और मनुष्य में कि मनुष्य अगर चाहे तो समग्र विश्व का भला भी कर सकता है। और आजकल मनुष्य की बुद्धि विकृत होने के कारण एक सेकंड में सर्वनाश भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पशु पंछी जानवर में इतने अकल नहीं है जो सबका भला कर सके। तो इसी हिसाब से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। तो ईश्वर खुद कहते हैं, मेरे बच्चे तुम कौन हो? तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम उसी समान में रहो। जैसे एक शेर का बच्चा अपने को कभी बिल्ली नहीं समझेगा, क्या समझेगा?
शेर ही समझेगा।
शेर का बच्चा कितना भी छोटा भले क्यों ना हो। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अपने को क्या समझते हो? तुम शेर के बच्चे हो, अर्थात ईश्वर के संतान हो, तुम मास्टर ईश्वर हो, मास्टर गॉड हो, उसी अनुरूप तुम्हारे सकल सूरत बोल चाल चलन गुण सब ऐसा ही होना चाहिए। तो उसी समान में रहना कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, ईश्वर की संतान हूं, उसी समान में रहना, उसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं। जब वो सेल्फ एस्टीम आज विकृत हो चुका है, लोग वो तो भूल गए, कोई किसी कंपनी का मालिक है कि कहीं किसी का हेड है तो उसका वो दिखाता है कि मैं कौन हूं, मेरी बात नहीं सुनता है, आई एम हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, आई एम हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या समझ के रखा है। वो सेल्फ एस्टीम बदल के ईगो हो गया।
ईगो,
इसके कारण ईगो इज कॉल्ड द रूट कॉज ऑफ
ऑल सफरिंग,
ऑल सफरिंग्स। आज संसार में, समाज में देखिए, किसी घर में भी देखिए, दफ्तर में देखिए, देश देश में देखिए, लोगों के अंदर जब ईगो पैदा हो जाता है क्या होता है। तो इसलिए ये भी एक आध्यात्मिक बीमारी है। और भी हम आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बाकी सब बीमारियों को पैदा करती है वो है आलस्य। वो कैसे पैदा होता है? हमारे अंदर कौन से ऐसा गुण था जो वो विकृत हो गया जिसके कारण लेजनेस पैदा हो गया?
ये तो मैं बता सकता हूं।
अच्छा बताइए, बहुत अच्छी बात है।
इसी के परिपेक्ष में इजीनेस।
यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जब वास्तव में मनुष्य का नेचर एट ईज, जब एट ईज नहीं हो देन डिजीज। तो जब हम अपना स्वाभाविक नेचुरल स्थिति में हम स्थित होते हैं तो उस समय हमारी जो स्थिति है वो स्वास्थ्य है। लेकिन जब हम एबनॉर्मल स्थिति में हम रहते हैं, इसलिए बताया था स्वास्थ्य माना स्वस्थिति में स्थित रहना। जब आत्मा अपने स्वस्थिति में स्थित है, अर्थात हम हमारे जो इनर सेल्फ है हम अपने स्वस्थिति में स्थित है, तो हम शांतिपूर्वक हैं, प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के प्यार से रहते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो कूल काम कंटेंटेड रहते हैं। वो हमारे नेचुरल नेचर है, दैट इज एट ईज। परंतु जब हम वो इजीनेस को भूल गए तो क्या हुआ? लेजीनेस
हम प्रभावी हो गए।
तो हमारे जो अच्छे गुण थे वो सारे को जब हम विकृत कर लिए तो हमारे अंदर ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य और भय। एक भय होना भी ये भी एक प्रकार की बीमारी है। वास्तव में अगर आप आज दुनिया में बहुत लोग भय के कारण कई काम बिगाड़ लेते हैं, हमेशा एकदम टेंस रहते हैं, ये भी एक शारीरिक बीमारियों को पैदा करते हैं। तो आजकल भय भी लोगों को होता है। भय क्यों पैदा होता है?
भय डॉक्टर साहब शारीरिक बीमारी में आता है कि आध्यात्मिक
देखिए मानसिक रूप में जब हमारी ज्ञान की कमी होती है, हम एक्चुअली कोई देखिए आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, मान लीजिए आपको आगे एकदम अंधकार है, आपको पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ भी, आपको डर लगेगा आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए डर लगेगा। तो जब अज्ञानता होती है लोगों को प्रकाश के बिना, तो वो अंधकार में जैसे हैं, लोगों को डर लगता है, ऐसे ज्ञान के बिना भी हमें डर लगता है। तो ज्ञान जिसको संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है उसको कभी भी डर नहीं लगेगा। आज लोगों को अनेक प्रकार के डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को आग से डर है, किसी को मौत से डर है, किसी और क्या से डर से, किसी को अपने बस से डर है, अनेक प्रकार की जो डर है इसका मूल कारण है इग्नोरेंस। तो ये भी एक आध्यात्मिक बीमारी है, फिर ये मानसिक रूप का रूप ले लेता है और बाद में फिर ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो आज भय का कारण है हमारी अज्ञानता, एब्सेंस ऑफ नॉलेज प्रोजेस फियर। ओके, तो अनेक प्रकार के हमारे गुणों के अभाव से अनेक प्रकार के इलनेसेस, आत्मा की बीमारियां पैदा हो जाती है, साथ साथ कई गुण परवर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो फिर विकार इसको कहते हैं, आत्मा की बीमारियों को। तो देखिए सार रूप में हम ये कह सकते हैं, जब हमारे आत्मा जब प्रेम स्वरूप होता है उसके अंदर लस्ट नहीं होता है, आत्मा जब लॉफुल होता है उसके अंदर एंगर पैदा नहीं होता है, आत्मा जब अच्छे गुणग्राही अच्छे चीजों को जब ग्रहण करने की जो विशेषता होती है, खूबी होती है, ऐसे समय पर उसको कभी ग्रीड नहीं पैदा नहीं होंगे उसके अंदर, और साथ में जब केयरिंग नेचर है तो कभी भी अटैचमेंट नहीं होगा, और इस प्रकार सेल्फ एस्टीम है तो ईगो पैदा नहीं होगा, और इजीनेस है तो लेजीनेस पैदा नहीं होगा। वास्तव में आज बहुत प्रकार की बीमारियों से आज जो लोग घिरे हुए हैं, अगर इसका रूट कॉज देखेंगे, मैं कहूंगा जो हमारे इनर सेल्फ को जो बीमारियां लगी हुई है आज की समस्या में, आज की दुनिया में जो देख रहे हैं, तो वो आत्मा की बीमारियों को अगर हम समझ जाएं और उस बीमारियों का हल अगर करें तो हमारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक ये स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर हो सकता है। इसका बड़ा गहरा रिलेशन है। आज मैं आपको एक एक बता सकता हूं कि हमारी आत्मा की जो बीमारियां है, आत्मा के गुण है, और ये कैसे शारीरिक बीमारियों के साथ क्या संबंध है।
आज की अभी तक की चर्चा से एक बात स्पष्ट हुई है कि अगर हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी इनर सेल्फ की अस्वस्थता से है। अगर हम स्पिरिचुअली अनहेल्दी हैं तो हम फिजिकली, मेंटली और सोशली अनहेल्दी होते ही हैं।
ऐसे तो बीमारियों का बहुत सारे कारण है, परंतु आज की बीमारियां जो दुनिया में हम देख रहे हैं, मुख्यतः दो प्रकार की बीमारियां हम कह सकते हैं। एक प्रकार की बीमारी है कम्युनिकेबल, संक्रामक रोग, जो एक दूसरे को फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और हैजा या टाइफाइड। ये सब बीमारियां एक दूसरे को फैलती
हैं, व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचती
फैलती है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो एक दूसरे को नहीं फैलती है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज
जी,
हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, या कैंसर, या जो लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, स्ट्रोक होता है। तो कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, ये बीमारियों का कारण ऐसे एक दूसरे को फैलने की बात नहीं है। ये बीमारियों को असंक्रामक रोग हम कहते हैं। तो ये बीमारियों का जड़ अगर देखा जाए तो ये हमारी आध्यात्मिक बीमारियां हैं, और ये बीमारियों का जड़ वास्तव में तनाव है, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का कारण अगर देखा जाए तो ये आध्यात्मिकता से ही बहुत डायरेक्ट सीधा सा संबंध है,
और स्ट्रेस का आजकल खूब बोलबाला है।
हाँ, इसलिए वर्तमान समय में लोगों को जो बीमारियां देख रहे हैं, ये इसलिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अगर ठीक कर दिया जाए तो ये सारी बीमारियां हम 99% बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ होगा, उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल स्वास्थ्य भी जब ठीक हो जाएगा, उसकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ये सब जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे भी वो ठीक हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे आज एड्स के बारे में हम कितनी सारी चर्चाएं सुनते हैं, कितने सारे,
बहुत ज्यादा
क्यों हो रहा है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे को फैलती है,
व्यक्ति से व्यक्ति को लगती है।
जब व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से वो स्वस्थ हो जाएगा, नेचुरली वो उसके अंदर ये लस्ट पैदा नहीं होगा, और उसके जो संबंध है दूसरों के साथ, जिस प्रकार आज रिलेशन में भी परवर्सन है, क्या क्या मनुष्य कर रहे हैं समाज में सभी को पता है। तो आध्यात्मिक रीति से व्यक्ति अगर स्वस्थ हो गया तो नेचुरली एड्स की बीमारी से वो सुरक्षित हो जाएगी,
मुक्ता उसकी शांत हो जाएगी, गुण में परिवर्तित हो जाएगी
नेचुरली। ये एक इन्फेक्शियस बीमारी, कई लोग इस ये बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसी बीमारी से भी वो मुक्त हो सकता है। तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आध्यात्मिक स्वस्थता द्वारा हमारे अंदर जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य आ जाएगा, तो हम ये कई प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज से भी हम बच सकते हैं। परंतु आज की दुनिया में जितने प्रकार के, जहां देखिए प्रदूषण ही प्रदूषण है, जो हवा लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों का तो अनेक कारण है, परंतु मुख्य रूप में जो बीमारियां आज घर घर में सभी को फैल रही है, बहुत सारी बीमारियों से हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य के द्वारा बीमारियों से बच सकते हैं।
तो आज हमने समझा कि स्पिरिचुअल डिसीजेज, स्पिरिचुअल इलनेस, यानी हमारी स्पिरिट की जो बीमारियां हैं, वो ही हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल बीमारियों का कारण है। और हमने जान लिया कि कौन कौन सी गुणवत्ताओं की कमी से या अनुपस्थिति से हमारे अंदर ये विकृतियां आती हैं, और यदि हम उनको ठीक कर लेते हैं तो हमारी ये विकृतियां हमारे अंदर से जा सकती हैं। आज की चर्चा यहीं तक, कल फिर हम चर्चा करने वाले हैं कि आध्यात्मिक इलनेस यानी आध्यात्मिक डिसीजेज किस तरह से प्रभावित करती है हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को। कल इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।